22 मार्च के संदेश में कहा कि चाहे कोई कहता है या नहीं कहता है, लेकिन हर एक के अंदर परसेंटेज में ये जरूर है कि अब यज्ञ को कौन संभालेगा, कार्य कैसे चलेगा। दादियां तो जा रही हैं, तो बाबा ने साफ साफ कहा कि बाबा और दादियां साथ हैं और यज्ञ की जो सेवाएं होती रही हैं और भी वृहद सेवाएं होंगी, और बाबा ऊपर से प्लानिंग कर रहे हैं और बाबा डायरेक्शन भी देते रहेंगे। इस बात ने सबको बहुत आथत प्रदान किया, शक्ति प्रदान की। फिर भी सबके मन में जो प्रश्न है आपने हम तक प्रेषित किए हैं, और भी जो आपसे प्रश्न पूछते होंगे वो भी आपने प्रेषित किए हैं, तो उन सबका सुंदर उत्तर आज हम आदरणीय सूर्य भाई जी से प्राप्त करेंगे। आज का विषय ही रखा गया है कि अब क्या होगा, तो आइए यहीं से शुरुआत करते हैं दादा जी के अभिनंदन के साथ। दादा जी, आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा?
बहुत अच्छा होगा, और भी अच्छा होगा, क्योंकि समय बदलता है, हम देख रहे हैं, दिन बदलते हैं, मास बदलते हैं, वर्ष बदलते हैं, जीवन बदलते हैं, युग बदलते हैं। 5000 साल का ये सृष्टि चक्र ऐसे ही पूर्ण हो जाता है। ये जो महान यज्ञ है, ये तो स्वयं रुद्र शिव बाबा के द्वारा रचा गया है, और उसके पास संपूर्ण प्लानिंग है इसको पूर्ण करने की। इसमें किस किस की आहुति पड़ेगी ये भी वो बता चुके हैं, और कंट्रोल और प्लानिंग शिव बाबा के हाथ में है। ऊपर वाला कह देते हैं इन्हें, नीचे वालों की प्लानिंग तो एक दायरे में ही होती है, कुछ वर्तमान की छोटी-छोटी चीजों को देखकर होती है, लेकिन ऊपर वाले की प्लानिंग बेहद दृष्टि से, अनलिमिटेड एटीट्यूड से भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए होती है। तो उसने बहुत अच्छी प्लानिंग पहले से ही की हुई है। हमें नीचे वालों को दिखाई देता है ये बात गड़बड़ हो गई, ये क्यों, ये क्या होगा, पर आगे सुन। कभी कभी ऐसा होता है नीचे जाना पड़ता है बहुत ऊपर जाने के लिए। थोड़ी सी निचाई ये स्वच्छ, क्लियर, सरल मार्ग दिखाने वाली होती है। आप एक पहाड़ी की ओर चल रहे हैं, पहाड़ी थोड़ी दुर्गम है, जो रास्ता आपने चुना है वो थोड़ा सा कठिन है, कांटे हैं, झाड़ियां हैं, ठीक ठीक नहीं है रास्ता, कहीं चढ़ाई टेढ़ी, कहीं सीधी, खतरों से भरा हुआ। लेकिन कोई आपको बताता है जस्ट 20 फुट इधर को आ जाओ, और फिर देखो हम 20 फुट उधर की ओर चलते हैं, और दिखाई देता है कि तो स्टेप जैसे बने हुए हैं, हम ऊपर जाने की इस यात्रा को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस युग परिवर्तन के कार्य में हो रहा है, दिन बहुत सारे हैं
जी। वैसे लौकिक में भी भ्राता जी एक बात कहते हैं कि अब क्या होगा, कोई कहता है तो लोग यही कहते हैं कि वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। तो सच में जैसा लगता है कि अब ईश्वर ने ही ऊपर से बागडोर संभाल ली है, जैसा आप कहते भी आ रहे थे, और सचमुच बाबा ने संदेशों में भी स्पष्ट कर दिया, और ये भी कहा कि जो भी होगा, अब क्या होगा मैं, कि जो भी होगा अच्छे से अच्छा होगा तुम ब्राह्मणों के लिए।
मैं तो देश के लिए भी यही कहता आया हूँ, और अपने यज्ञ के लिए भी, कि जब बाबा देखता है ऊपर से कि अब इनके बस का काम नहीं रहा, तो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। तो देश का भी ले लिया है हम देख रहे हैं, और इस महान यज्ञ का भी कंट्रोल अब उसके ही हाथ में रहेगा।
जी जी, तो बाबा ने हम सबको मैसेजेस में निश्चिंत रहने को भी कहा है, फुल स्टॉप लगाने को भी कहा है। फिर भी मन में जो प्रश्न आपके थे आपने प्रेषित किए हैं, तो अब उन्हें लेकर मैं भ्राता जी की ओर चल रहा हूँ। भ्राता जी, एक प्रश्न आया है, वे कहते हैं कि बाबा कहते हैं मैं नजर से निहाल करूंगा, आबू से लेकर नीचे तक लंबी लाइन लगेगी बाबा की दृष्टि लेने के लिए, तो साकार रथ तो नहीं होगा, तो ये दृष्टि का पाठ कैसे चलेगा?
देखिए, दृष्टि तो बाबा ऊपर से भी देगा, निहाल करेगा वो दृष्टि से, लेकिन दृष्टि साकार में आकर देगा या ऊपर से अव्यक्त में हमें जाना होगा उसके पास दृष्टि लेने के लिए। इस संसार में क्या होता है कि मनुष्य, एक शब्द हमारे संसार में प्रचलित है, कंफर्ट जोन। भाई बाबा आ रहे थे, पार्टी मिलने आ रही थी, लोग आनंद ले रहे थे, सोचा था यही तो चलेगा, परंतु परिवर्तन तो नियम है इस सृष्टि चक्र का। दूसरी बात, उससे कुछ विशेष प्रगति हो रही है ब्राह्मणों में, ये भी बाबा को दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए बाबा ने कहा मेरे पास आओ। अब मेरे पास आने के लिए साधनाएं करनी पड़ेंगी, शरीर छोड़ के हमें उसके पास नहीं जाना, लेकिन योग अभ्यास करते हुए उसके पास जाना है और ऐसा अनुभव करना है बाप दादा बिल्कुल सम्मुख है, दृष्टि दे रहे हैं, निहाल कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है लाइन लगने की, वो तो अभी जय जयकार के दिन समीप आते जा रहे हैं। जब साक्षात्कार होंगे उनमें किन के होंगे सुन ले आप, पहले होंगे अश्रुतनों के। आप सोचते होंगे कुछ चले गए, कुछ है यहाँ, उनके द्वारा महान कार्य होंगे। और फिर जो 108 महान आत्माएं हैं, उनमें से पहली 25 आत्माएं सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी 8 के बाद 17। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कम से कम 20 आत्माएं इस धरा पर साक्षात्कार मुहूर्त बनकर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगे, उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग, अभी लाखों की बात नहीं रहेगी, करोड़ों लोग आबू की ओर बढ़ेंगे। और आबू एक महान तीर्थ बन जाएगा। अब विचार तो करो, जहां हजारों बार भगवान आए हो वो स्थान क्या हो गया होगा। हम यहाँ रहने वाले शायद उसके महत्व को कम समझते हैं, पर वो स्थान तो महान तीर्थ बन जाएगा। उस पर आकर वहां कदम रखकर ही लोग राहत महसूस करेंगे, वहां आकर वहां का पानी पीकर लोग निरोग हो जाएंगे, वहां आकर अनेकों को जन्म जन्म की भक्ति का फल मिलेगा, साक्षात्कार होंगे, वहां योग अभ्यास करेंगे, आएंगे, बैठेंगे, विघ्न और समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, निरोग होंगे, अनेक चीजें यहाँ होने वाली है। इसलिए नीचे से ऊपर तक नहीं, मुंबई से आबू तक क्यों लगेगी, दिल्ली से आबू तक क्यों लगेगी।
जी 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 जी, वो दिन भी बड़े सुहावने होंगे। आपने कहा करोड़ों, तो मैं सोच रहा था कि आबू में कैसे हम एडजस्ट करेंगे इतने सारे लोग।
सुहावने तो होंगे, पर आपको सोने नहीं देंगे लोग, ये भी देख लेना, खाने भी नहीं देंगे।
जी जी, बाबा ने तो कहा ही है कि आप लोगों को रात में भी जाकर ऐसी सेवाएं करनी होंगी, और शायद ये भी कहा बाबा ने कि पत्थर जो है उसे तकिया बना के लोग सो जाएंगे।
वही मैं कहने जा रहा था कि कहीं भी इतनों को एकोमोडेट तो नहीं कर सकते। मान लो हमारे पास 10 लाख लोग आ जाए,
जी
10 लाख हालांकि बहुत बड़ी संख्या नहीं, हरिद्वार जैसे स्थान पे तो आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जहाँ छोटा आबू है, छोटे स्थान है, लेकिन ये पहाड़ियाँ ही सबके बेड्स बन जाएंगी। बाबा ने कहा था तुम जो बड़ी बड़ी अटैची लाते हो वो तकिए बन जाएंगे, रात दिन हो जाएगी, क्योंकि इतनी रोशनी होगी, इतने लोग जागृत होंगे कि रात को भी सोएंगे नहीं, वो सोचेंगे सो तो घर जाके लेंगे, अब इसका आनंद ले लें। एक जयकार का पीरियड, मुझे लगता है अराउंड 2025 हम इस काल में प्रवेश कर जाएंगे और ये महान कार्य संपन्न होगा।
दारी जी के जाने के बाद भोग संदेश में बाबा ने कहा था कि बच्चों को अब यही समझना है कि अभी जो कार्य बाकी है उसकी जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है। बाबा हमसे कौन सी जिम्मेवारी व कार्य पूरा करवाना चाहते हैं?
देखिए, जिम्मेदारी एक तो सारे संसार को ईश्वरीय पैगाम देना, पहली जिम्मेदारी। देवकुल की आत्माओं को भगवान से जोड़ देना दूसरी जिम्मेदारी, उनके अंदर छुपे हुए देवत्व को जागृत करना, यानी उनकी स्थिति को परफेक्शन की ओर ले चलना। दूसरा, सभी धर्मों की आत्माओं को भी मुक्ति का वरदान दिलाना है भगवान से, जब उसे अल्लाह कहते हैं या गॉड फादर कहते हैं या और भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न नाम है, एक बार अपने परम पिता से, अपने खुदा से, अल्लाह से अवश्य मिलेंगे। ये कार्य कराना, ये महान कार्यों की जिम्मेदारी सबके ऊपर है, और अपनी स्थिति को महान बनाकर ही ये महान जिम्मेदारियां निभाई जा सकेंगी।
जी, तो बाबा का इशारा हमारी स्थिति की ओर है। अब हम बाबा मिलन कैसे करेंगे? क्या अब धर्मराज का पाठ शुरू हो गया?
धर्मराज का पाठ तो अभी शुरू नहीं हुआ, धीरे धीरे होगा। उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में पाप तो अपनी चरम सीमा पर बढ़ता ही जा रहा है, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पाप करने वालों को ये पता नहीं कि वो पाप कर रहे हैं। हर घर में पाप हो रहा है, हर मनुष्य के द्वारा पाप हो रहा है, तंत्र मंत्र के द्वारा पाप हो रहा है, व्यवहार में पाप हो रहा है, नॉन वेज खाकर लोग पाप कर रहे हैं, विषय विकारों में पाप हो रहे हैं, लूटना पीटना चोरी चकारी मार पीट रेप ये तो सब है, लेकिन ये सूक्ष्म पाप भी हो रहे हैं। तो साथ साथ मनुष्य को उसकी सजा भी मिल रही है, किसी को थोड़ा आगे मिल जाती है। जो युवक गलत काम कर रहे हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी हो रही, मानसिक रोग हो रहे हैं। तो धर्मराज का जो रियल पार्ट है वो अभी चालू नहीं हुआ, थोड़ा सा 2-4 साल के बाद चालू हो जाएगा। जब आत्माएं पाप को स्वीकार करेंगी, पाप की उन्हें रियल सजा मिलेगी। सजा ऐसी नहीं होगी कि जलते हुए कढ़ा में डाल दिया जाएगा उन्हें, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, संबंधों में कड़वाहट, जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु, ये सब उसके स्वरूप होंगे। तो धर्मराजपुरी यही बन जाएगी, ये संसार ही धर्मराजपुरी बन जाएगा।
जी जी, तो ये जो एक प्रश्न है बाबा जी, मान लीजिए अभी नए आए हुए हूँ, बाबा के बच्चे या आने वाले हैं, तो वो मिलन का स्वरूप जो हमारा था, जिसका आनंद हमने लिया अव्यक्त रूप से इतने वर्षों तक, क्या वैसे?
देखिए, वो तो नहीं होगा। कई सोचते हैं बाबा दूसरा व्रत ले लेगा। कई लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि फलानी बहन में बाबा आने लगेगा और कार्य आगे चलेगा। अभी उसको आने की जरूरत नहीं, अब उसे हमें तैयार करना है बुलाने के लिए। इसलिए बाबा ये चाहता है कि हम अपनी स्थिति को महान बनाएं और रोज मिलन करें, अच्छी तरह करें। स्टेज पे तो कम लोग जा पाते थे, बाबा सभा में आते थे, बड़ी बड़ी सभाओं में 20-25 हजार में मुरली चलती थी। सो मुरली तो अभी भी चलती है, वही है। दृष्टि बाबा की हर एक को अमृत वेले सवेरे बाबा से ले, बाबा के पास जाकर लेनी है। देखिए, यहाँ तो प्रैक्टिकल में होता नहीं था, लाइन भी लगती थी तो आधा सेकंड मिलता था एक को, एक सेकंड भी नहीं।
जी,
अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम जितना लंबा समय चाहे सूक्ष्म मतन में जाकर बाबा से दृष्टि ले, वरदान ले, तो उससे भी अच्छे अनुभव हो रहे हैं लोगों को। होंगे नहीं, मैं तो देख रहा हो रहे हैं, क्योंकि बाबा जब अपने कार्यों में परिवर्तन करता है तो अपना कुछ खोल भी देता है देने का। तो वो विशेष रूप से दे रहा है, वरदान दे रहा है, मदद कर रहा है। हमें ये सोच के परेशान नहीं होना चाहिए कि वो कैसे आएंगे दिन, ये सोचना चाहिए जो दिन अब चल रहे हैं इसको हमें एंजॉय करना है, कहीं ये दिन भी ना चले जाए। क्योंकि उन दिनों में बहुत लोग आए और चले गए, बहुत लोग तो एक बार मिलन करके ज्ञान ही छोड़ गए, बहुत लोग एक बार मिलन करके संतुष्ट हो गए, भगवान को देख लिया हो गया काम पूरा। इसलिए बाबा चाहते हैं इससे ऊपर उठाना, ताकि हम स्वयं एक महान स्थिति को प्राप्त करें, श्रेष्ठ योगी बने।
जी जी, जब साकार बाबा अव्यक्त हुए थे, तब आगे की अव्यक्त पालना की संपूर्ण जानकारी, यज्ञ का कारोबार कैसे चलेगा, सब कुछ स्पष्ट किया था। अव्यक्त पाठ कैसे रहेगा, उनकी संपूर्ण जानकारी खुद बाप दादा ने अपने बच्चों को दी थी। अब आगे यज्ञ पालना की या यज्ञ के प्रारूप की जानकारी हमें कौन देगा?
देखिए, अब वो स्थिति तो नहीं है कि कार्य कैसे चलेगा, वो तो चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार है, सब कार्य सुचारू रूप से वैसे ही जैसे चल रहा था, चल रहा है और चलता भी रहेगा। लेकिन यज्ञ में कुछ और कार्य करना है विशेष, वो ऊपर से कंट्रोल होगा, की विशेष आज्ञाएं निश्चित रूप से बाबा वतन से भेजेंगे। ये कार्य पहले भी चलते रहे और अब जहां जहां भी उसकी जरूरत पड़ेगी बाबा वो कार्य करेंगे। बाकी नीचे का जो कार्य एडमिनिस्ट्रेशन का था वो दो कार्य है, हमारे पास भी दो काम है। एक है कुछ आत्माएं आकर्षण का केंद्र बन जाए, यानी कुछ पर्सनालिटीज डेवलप हो जाए जिनकी ओर आकर्षित होकर सारा संसार आएगा। और जब लोग आएंगे, मान लो 2 लाख आ गए, अभी एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें रखना है, खिलाना पिलाना है, उनकी देखभाल करनी है, उन्हें अच्छी अच्छी फीलिंग्स देनी है, क्लासेज करानी है, योग अभ्यास सिखाना है और अच्छे अनुभव कराने हैं, तो दो पार्ट हो गए। कुछ थोड़ी गिनी चुनी आत्माएं होंगे जो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगी, जैसे बाबा थे पहले या मामा थी, फिर दादियां रही, लेकिन अब कुछ और आत्माएं भी तो है ना। महान आत्माओं की कमी नहीं होती, कभी एक जाता है दूसरा महान व्यक्ति आ जाता है, तो ये दो पार्ट चलेंगे।
जी जी, बाबा ने कहा है कि अंत में तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार होगा, तो क्या 8 रत्नों का या साक्षात्कार कराने का पार्ट ड्रामा में नहीं था, फरिश्तों के रूप में ही प्रत्यक्षता का पार्ट चलेगा?
हाँ।
इनका भाव ये है कि जैसे हमारी दादियां कहते हैं, जो अष्ट रत्न है वो तो ऊपर चले गए,
सारे अष्ट रत्न अभी ऊपर नहीं गए, 5 ही गए हैं, अभी 3 की इंतजार करनी है सबको। ये तो हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार सोचता है ना, भाई वो दादी बहुत महान थी, नो डाउट दादियां तो महान थी, लेकिन अगले मन के भी तो है ना 25 तक, वो भी सब अति महान है। असतन तो ऐसे जिनमें एक एक नंबर का एक एक डिग्री का अंतर हो जाता है, बाकी और भी बहुत महान है। तो साक्षात्कार का पाठ और अनेक आत्माओं का भी है, जैसे बाबा और मामा का पाठ गुप्त था, बाबा के द्वारा तो साक्षात्कार होते भी थे ब्रह्मा बाबा के, मामा के तो किसी को होते नहीं थे, तो माता पिता का पाठ गुप्त। ऐसे ही अब होगा इष्ट देव देवियों का पाठ प्रत्यक्ष, उसमें कई आत्माएं रहेंगी, तो वो कार्य अब चलेगा। और जैसे हम लोग भगवान से मिल के संतुष्ट और प्रसन्न हुए ना, तृप्त हो गए, वैसे ही जो भक्त आएंगे वो अपने अपने इस देव देवियों से मिल के तृप्त हो जाएंगे। इसलिए वैसे ही जय जयकार चलेगी जैसी बाबा के मिलन के समय चली थी। इसलिए कोई ये ना सोचे कि उनका पाठ क्या था, अब उनके पाठ दूसरे हैं, जो महान आत्माएं गई हैं, 8 ही नहीं गए, बहुत सारे गए हैं, तो उनके द्वारा बाबा बड़े कार्य करा रहा है संसार को, अनेक जगह उसको मदद करानी होती है अपने फरिश्तों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम भी कराने होते हैं, पॉलिटिशियंस के द्वारा कराने होते हैं, और भी संसार में कोई बहुत दुखी होकर उसे पुकारता है, वो बहुत पीड़ित होकर चिल्लाता है, उनको भी वो उनके द्वारा मदद कराते हैं।
अब तक बाबा ने अष्ट रत्नों में 2 का ही स्पष्ट किया है, बाबा और मम्मा, अभी आपने कहा 5 ही गए हैं, 3 बचे हैं, तो थोड़ा स्पष्टीकरण मिल जाए तो।
देखिए बात तो ये बड़ी गुप्त है, पर अब कुछ बातें गुप्त भी नहीं रही, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी और गुलजार दादी, हृदय मोहिनी दादी, इनका नंबर तो है ही, क्योंकि ये ऐसी महान आत्माएं थी जिनको हमने देखा है, जो न केवल एडमिनिस्ट्रेटर थी बल्कि महान योगी, परम पवित्र, परिवार को प्यार देने वाली, संतुष्ट करने वाली, बहुत निर्मल, निरंकारी, निमित्त भाव में, समर्पण भाव में रहने वाली थी तीनों, तो यही असत्नों के लक्षण होते।
जी जी जी, बाकी 3 अभी हमारे साथ।
देखिए ये ऐसा ही है, बाबा ने कह दिया था, सूक्ष्म बात है, कोई सोचे भाई फलाना व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है या फलाना व्यक्ति बहुत सेंटर संभाल रहा है, ये तो माला में आएंगे ही, ये कार्य संभालना एक अलग चीज है, क्वालिटी है। बाबा ने बताया था ये, तब से हमने भी जाना था कि ये किसी में कुछ कार्य करने की, कराने की, संभालने की क्वालिटीज होती है, उनको वो कार्य मिल जाता है। लेकिन स्पिरिचुअली जो बहुत महान है, जैसे बाबा ने कहा जो अश्रतन है, वो संपूर्ण सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, वो संपूर्ण निर्विकारी हो जाएंगे, वो महान योगी और विदेही स्थिति में स्थित हो जाएंगे, उनका चित्त सभी के लिए सुभावनाओं से भर जाएगा, वो सभी को संतुष्ट कर पाएगा। स्वयं भी संतुष्ट मनी बन जाएंगे। स्वभाव सरल निर्मल निमित्त भाव, कोई ईगो नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई विषय विकार नहीं, तो ये एक स्पिरिचुअल स्थिति अलग है। इसके आधार से ये महानात्माएं चुनी जाती है।
बिल्कुल, आपने की स्पष्ट रूपरेखा खींच दी हम सबके आगे। मतलब हम सब अभी रेस में हैं, हम पूरी जोर लगाए कि हम भी बाबा को वैसा ही बन के दिखाए जैसे दादिया बन के उन्होंने दिखाया। बेटा जी, अगला प्रश्न है, कहते थे कि बाबा के जाने के बाद पुरुषार्थ का टाइम नहीं होगा, तो दादी का जाना, मतलब बाबा का जाना, तो दादी जी के जाने के बाद क्या अब हमारा पुरुषार्थ का टाइम नहीं है?
देखिए, पुरुषार्थ तो एक ऐसी चीज है जो निरंतर चलने वाला है। जब तक कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, वो भोजन करता है, वो पानी पीता है, वो रहता है। पुरुषार्थ भी ऐसी चीज है, मान लो हमें ये अभ्यास करना है मैं आत्मा हूँ, तो ये कभी खत्म थोड़ा होता है। हमें ये अभ्यास करना है मैं एक महान आत्मा हूँ, ये मास्टर ज्ञान सूर्य, ये मास्टर सर्वशक्तिमान, ये कभी खत्म थोड़ा ही होता है। पुरुषार्थ तो जब तक हमारा जीवन है चलता ही रहेगा। लेकिन बात होती है किसी विशेष लक्ष्य को पाने के पुरुषार्थ। जैसे भाई आईएएस वालों की मान लो आयु सीमा 32 वर्ष रख दी, अब मुझे पता नहीं कितनी है, पहले 28 वर्ष होती थी, अब शायद 32 वर्ष है। तो 32 वर्ष अगर किसी के पूरे हो जाए तो कहेंगे ना बस भाई पूरा हो गया, अब तुम आईएएस नहीं कर सकते। तो लेकिन एक गुंजाइश होती है, मान लो वो कोई ऑफिसर है, वो अपना डिपार्टमेंटल एग्जाम देते देते फिर आईएएस का भी दे सकता है 40 साल की आयु में भी। ये अपॉर्चुनिटी रहती है। हमारे ही कई फ्रेंड्स थे, जानकार थे, वो अच्छे ऑफिसर थे, डीएफओ रहे, और आगे बढ़े, वहीं उन्होंने एग्जाम दे दिया और आईएएस हो गए। तो ऐसे ही इस पुरुषार्थ में अभी तक भी मार्जिन है, कौन माला में आ सकता है, कोई भी आ सकता है। दो चार मण के विजय माला के भी दाने अभी खाली है। अब हमें पुरुषार्थ करना है, इसलिए पुरुषार्थ का कहीं एंड नहीं होता। दूसरी बात ये इसलिए कही जाती है, किसी भी संस्कार को बदलने में समय लगता है। कोई भी संस्कार को फटाफट एक दो दिन में नहीं बदल जाता। जैसे संपूर्ण प्योरिटी है, उसको बदलने में, संपूर्ण प्योरिटी को लाने में समय लगता है। मान लो किसी को फीलिंग आने का संस्कार है, अब ये नहीं कि एक दो साल में कोई फीलिंग प्रूफ हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल भी लग सकते हैं। ऐसे और कोई संस्कार है, मूड ऑफ करने का संस्कार है, छोटी छोटी बातों में नाराज होने का संस्कार है, या असंतुष्ट रहने का संस्कार, इनको बदलने में समय लगता है। अब समय तो कम होता जा रहा है, इसलिए कहा जाता है पुरुषार्थ का समय कम होता जा रहा है, खत्म कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई बहुत तेज पुरुषार्थ करे, जो प्राप्ति लोगों ने 50 साल में 80 साल में की है, वो 8 साल में भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा जोर लगाना पड़ता है। और इसका कारण ये भी है कि पुरुषार्थ की रिफाइन गति, रिफाइन विधियां अब प्राप्त है। हमें याद है जब हम आए तो हमें 2-4 साल तो ही समझने में ही लगा कि योग इस तरह अभ्यास करें, इस तरह ये परफेक्ट स्थिति है, या ये भगवान इससे राजी हो गया, इससे ये भी सोचते थे। तो धीरे धीरे अनुभव से समझ में आता।
बाबा ने भी मूर्तियों में सब स्पष्ट
अभ्यक्त में बहुत स्पष्ट किया। तो वो मक्खन भी निकला हुआ है, आने वालों को तो मक्खन खाना है। छाछ तो बिलो ली, दही बिलो दी सबने, हम मक्खन बचा है।
जी जी, इसीलिए शीघ्र हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। 22 मार्च को वेदांती दीदी के तन में दादी गुलजार और बाप दादा का अवतरण हुआ, दृष्टि दी। क्या बाप दादा का आना ऐसे ही नहीं हो सकता? क्या ऐसे ही तीसरा नंदी का पाठ नहीं चल सकता?
तीसरे नंदी की तो जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि भक्ति में भी दो ही है नंदी, तो नहीं तो तीसरा बैठाना पड़ेगा। वो तो नहीं बैठा जाएगा। बाबा इस तरह आए तो सबको संतुष्ट तो नहीं हो सकती ना, और बाबा कुछ और देना चाहते हैं, कुछ और कराना चाहते हैं। बाकी बाबा के ऊपर है, वो मालिक है, और वो ऐसे ही आके आधा घंटा आके ऐसे ही दृष्टि दे, तो मेरे लिए तो परमानंद की बात होगी।
और ऐसा ऐसा हुआ भी करता जी, जब दादी को भोग लगा तब भी, और कल हम लोगों ने देखा जब दादी जानकी जी को भी बाबा लेकर के आए, तो ऐसा भी एक सुंदर रोल संभव है कि भविष्य में हो और हम
हो सकता है। ये तो बाबा के ऊपर है, उसकी बुद्धि में क्या है
जी।
और ऐसी कई आत्माएं तो बहुत अच्छी संदेशी तैयार भी है और ये पॉसिबल भी है
जी। जी जी, चलिए अमृता जी, ये सबके दिल की वैसी चाहना तो है ही कि बाबा से हम ऐसे ही मिलें, साकार में भी अव्यक्त में तो हम मिलते हैं ही, और स्थिति वैसी बनानी है। एक बात बता दी, इन्होंने आगे भी कही कि बाबा जैसे वेदांति दीदी के तन में आए, बाबा हमेशा राइट हैंड से वरदान देते हैं लेकिन दीदी ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया था, तो इसका कारण क्या है? और बाबा तो बहुत स्लो सबसे मिलते थे और दीदी का की स्पीड हमें थोड़ी ज्यादा लग रही थी, तो वहाँ थोड़ा सा मन में एक प्रश्न पैदा हुआ, कृपया स्पष्ट करें।
ये क्या होता है कि जिस मीडियम का आधार उन्होंने लिया होता है, उनकी क्या गतिविधि है, उनके क्या संस्कार है। वेदांति दीदी तेज ही चलती है
और संभव है कि वो लेफ्टी भी हो।
हाँ, संभव है कि वो लेफ्ट उठाने की उन्हें आदत हो आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद तो दोनों ही हाथों से मिलता है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं, और जब भगवान कुछ दे रहा हो तो उसमें लेफ्ट और राइट का कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे पता नहीं वेदांति बहन लेफ्ट से ही देती है राइट से, पर ये कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और चलना भी वो तो ऐसा भी होता है ना कि बाबा को बहुत जल्दी ही आना और जाना था, इसलिए सबके पास उतने ही समय में पहुंचना है, इसलिए भी स्पीड बढ़ गई हो, इसमें किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं।
जी जी, कहते हैं सभी एडवांस पार्टी वालों ने जन्म लिया है तो फिर सूक्ष्म वतन में योग के समय कभी कभी कुछ कुछ दादियां दिखाई देती हैं, बाबा भी दिखा देते हैं, तो क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है, सच नहीं है, या सच में वो फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में है? इस कंफ्यूजन को क्लियर।
देखिए, सूक्ष्म वतन में फरिश्ते स्वरूप में वो नहीं है गुलजार दादी के अलावा, क्योंकि बाबा ने गुलजार दादी के लिए बता दिया है, उनकी अंतिम इच्छा भी बहुत ज्यादा थी, इच्छा ही नहीं, जैसे वो भगवान से जिद कर बैठी थी कि मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना है, आपके साथ रहना है। अब वो उनके रथ रहे थे 52 साल, 50 साल पूरे तो साथी थे ना, एक दूसरे पे अधिकार भी, तो भगवान को उनकी बात तो अवश्य सुननी पड़ी, इसलिए कहा कि तीनों ऊपर से सूक्ष्म वतन से कार्य करेंगे, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और गुलजार दादी, लेकिन बाकी सभी ने पुनर्जन्म ले लिया है। वही बात उनको फिर से दिखाने की, वो तो मैं ऐसा कहूंगा जैसे हम लोग यहाँ दोनों डायलॉग कर रहे हैं, बाबा हमें ऊपर दिखा सकते हैं, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं, एक ही समय पर अनेक स्वरूप धारण करना। फरिश्ता स्वरूप तो ऐसा है, अनेक बनाए जा सकते हैं, और वो तो ऑल माइटी है, ऑल पावरफुल है, तो किसी को भी कहीं भी दिखा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि मान लो प्रकाशमणि दादी ऊपर दिख रही है तो वो कोई शरीर छोड़ के आई है, शरीर छोड़ के नहीं आते, शरीर छोड़ के आना माना तो मृत्यु, वो वहां भी है और वहां भी है, वहां उसका प्रोजेक्शन है, बस इसको ऐसे ही समझना चाहिए। तो बाबा भिन्न भिन्न फरिश्तों का जैसे आह्वान कर लेते हैं, तो जहाँ वो वर्तमान है वो वर्तमान में है ही, बच्चा स्कूल में पढ़ने गया होगा, लेकिन उसका फरिश्ता स्वरूप अब बाबा के सामने है और बाबा उनके द्वारा कहीं भी कार्य करा सकता है। ये वो लोग समझ सकते हैं जिनको योग के बहुत गहरे अनुभव हैं। भक्ति में भी ये बात चलती रही, कुछ सिद्ध पुरुष ऐसे हुए जो एक ही समय पर अपने कई जगह अलग अलग रूप बना लेते थे, तो लोग देखते थे उनको
कि वो यहाँ भी है, वहाँ
यहाँ भी है, अरे वो तो वहाँ थे, उत्तीस ने कहा तो हमारे पास थे, वहाँ तो भोजन करके गए, जो दूसरे ने कहा वो तो गंगा स्नान कर रहे थे मेरे साथ, तीसरे ने कहा नहीं वो तो मेरे घर में आए थे। तो ये सिद्धियाँ भी हैं और ये शक्तियाँ भी हैं, और बाबा के लिए तो ये खेल है, सेकंड में संकल्प किया रोने लगेगा।
लेकिन क्या यहाँ जिस तन में अभी दादियां हैं, मम्मा हैं, लेकिन उन्हें तो वो फीलिंग नहीं होती होगी ना कि वहाँ हम इस रूप में हैं, उनका तो वो अलग ही रोल और पाठ चल रहा है,
उनका अलग रोल होगा, बाबा अलग काम करेंगे
जी। सूक्ष्म वतन में हम जब चाहें दादी से क्या दृष्टि ले सकते हैं, दादी को भी भोग लगा सकते हैं?
लगा सकते हैं।
अमृत वेले हम सुक्ष्मतन में बाबा से शक्तियां वरदान लेते हैं। अब दादी जी भी बाबा का रथ है तो क्या दादी जी से वो सारी शक्तियां वरदान ले सकते हैं? क्योंकि दादी को हमने देखा है तो उनको इमर्ज करना हमारे लिए इजी होगा, तो क्या ये भी किया जा सकता है?
देखिए, शक्तियां लेने की जहां तक बात है, आज तक हमने बाबा के महावाक्यों में जो सुना है, निराकार आत्मा बनकर निराकार सर्वशक्तिवान से बुद्धि योग लगाने से ही हमें शक्तियां मिलती हैं। लेकिन जब हम फरिश्ते बनकर और दादियों को सामने इमर्ज करेंगे तो हमें अच्छी प्रेरणाएं मिलेगी, दृष्टि से कुछ अच्छी फीलिंग्स होगी, हमें वरदान मिल सकते हैं। लेकिन शक्तियां लेने के लिए थोड़ी बहुत तो मिल जाएगी, जैसे हम भी किसी को दृष्टि देकर शक्तियां दे देते हैं ना, तो इन फरिश्तों से भी शक्तियां तो मिल जाएंगी, लेकिन वो थोड़ी होंगी। अगर हमें संपूर्ण शक्तियां चाहिए तो सर्वशक्तिवान से ही बुद्धि योग लगाना होगा।
जी जी दादा जी, उनसे तो हम लगाएं, लेकिन जैसे मैं समझ पाया कि जैसे यहाँ दादी के तन में बाबा आते थे तो दादी तो हमारे लिए गौर थी, बाबा को ही हम देखते थे, उनको ही देखने की जैसे आदत है, तो क्या सूक्ष्म तन में भी दादी के तन में बाबा को देखते हुए हम वो शक्ति वो प्रकाश नहीं ले सकते?
ले सकते, ये किया जा सकता
है। जी जी जी,
उनके तन में अगर हम बाबा को देखेंगे निराकार को, तो हमें वही शक्ति और वही अनुभूति होती रहेगी।
दादा जी, एक प्रश्न ये कि बाप दादा ने तीसरा रथ ले लिया है, वो यहाँ आ रहे हैं वहाँ आ रहे हैं, ये सब भी यूट्यूब में आजकल बहुत देखने को मिलता है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, बिल्कुल ही अव्यक्त बाप दादा की आवाज में वो बोलते हैं, वैसा ही ट्रांस में जाने का उनका ढंग होता है, तो ये क्या है बाबा? तो
आवाज में बोलना किसी की भी, ये तो बहुत सारी आत्माएं कर लेती है, क्योंकि संसार में जो भटक रही आत्माएं उनमें बहुत सारी आत्माएं अच्छी भी हैं, और ऐसा पाठ एक जगह नहीं, 8-10 जगह चलता ही रहता है सदा ही, तो सभी कह देते हैं यहाँ भी बाबा आ रहा वहाँ भी आ रहा, लेकिन ये बाबा नहीं होता। बाबा का आने का पाठ मैं फाइनली बता दूं, बाबा का इस तरह आने का पाठ अभी समाप्त हुआ, क्योंकि मुरलियां चलाकर उसने संपूर्ण ज्ञान दे दिया, और ज्ञान देने की जरूरत नहीं बची है, इसलिए ये सब तो आत्माएं काम करती हैं, इन्हें परमात्मा मानना बहुत बड़ी गलती है।
तो ऐसे स्थानों पे जो लोग जा रहे हैं वो कई बार कहते हैं कि नहीं अब बाबा यहाँ आ रहे हैं और हर प्रकार से मैसेजेस सर्कुलेट, तो मैं क्लियर आज बैठे जिस मन से आपसे जानना चाहूंगा।
देखिए, भारत तो स्वतंत्र देश है और हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, वो किसी के पास भी जाए, औरों के पास भी तो जाते हैं, इविल सोल्स के पास भी जाते हैं, दरगाहों पर भी जाते हैं, और हिंदुओं के भी जो बहुत सारे बने वहाँ भी जाते हैं, लेकिन भगवान का अवतरण एब्सोल्युटली रॉन्ग है, उसको स्वीकार करने वाले भी बुद्धिमान नहीं है, मैं इतना ही बस कहूँगा।
जी जी, मतलब परमात्मा केवल आबू में आते हैं, उनका रथ मुकर्रर है, वो कहीं और नहीं।
बाबा ने बिल्कुल कह दिया, वो उसी तन में आएंगे जिनको वो निश्चित करेंगे, या जिनको यहाँ नियुक्त की गई जो उनकी महान आत्माएं वो निमित्त करेंगी, बाकी में नहीं।
जी जी जी, कई जगह मम्मा के आने की बात सुनाई देती है, ये कहा जाता है ब्रह्मा का पाठ पूरा हुआ, अब हमारे यहाँ शंकर का पाठ चलेगा, तो ये सब क्या है?
ये सब कंफ्यूजन है लोगों के, इसलिए असली ध्यान देना चाहिए अपनी स्थिति को योग युक्त बनाने के लिए। मैं तो देर के लिए कहूँ, मान लो कि भगवान जगह बाबा आ गए, आप 2 मिनट मिल लिए, बड़े खुश हो गए, कहीं तो ऐसे ऐसे भी आते हैं वो हर घर में जाते हैं वहाँ बाबा आता है, बाबा इतना सस्ता नहीं होता है, डिवाइन पावर है, किसी को भी उस बहन को ले गए किसी के घर में, लाओ तुम्हारे घर में बाबा को बुलाएंगे, पैसे वाले हैं वे पैसे मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, इतना सस्ता इसको नहीं लेना चाहिए, ये भगवान का एक तरह से गलत स्वरूप प्रस्तुत करना भी है।
जी जी,
ऐसे शिव बाबा कहीं नहीं आते, मामा तो जब आएगी वो सबको पता चल जाएगा, और मामा सूक्ष्म रूप से नहीं आएगी, वो तो साकार रूप में ही आएगी।
जी जी, चलिए हम सबको भी इंतजार रहेगा,
और उसको किसी को कहना नहीं पड़ेगा ये मामा है, वो भी नहीं कहेगी ये मामा है, वो तो जग विख्यात हो जाएगी।
एक चीज बता जी मुझे, जो आपने ये बात कही वो बहुत ही, मैं अपने सब भाई बहनों को भी कहना चाहूंगा, जो सत्य है उसे स्वीकार सहज रूप से सभी कर लेते हैं, उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही इतने महान इतनी ज्यादा उनका उड़ा होता है कि सभी दिल से उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, तो हम ये सिद्ध साबित करने की कहीं जरूरत नहीं,
मगजमारी करने की
जी जी जी
कि आ जाओ बाबा आ रहा है, तुम्हारे घर में ले आए बाबा को बुला ले, इन सब की जरूरत नहीं।
तो हम अपनी बुद्धि को पूरी तरह स्पष्ट रखें,
क्योंकि अगर हमने अपने को योगयुक्त नहीं बनाया
जी,
अगर हमने अपनी स्थिति को महान नहीं बनाया, फायदा क्या होगा। मैं देखा बहुत लोग गए मिलने के लिए योगयुक्त जो बाबा थे, घर में आके भी ढीले के ढाले, सवेरे भी नहीं उठ रहे, धारणाओं पे भी नहीं चल रहे, तो इस बाबा मिलन का कोई लाभ थोड़ा ही होगा।
जी जी, और एक बात हमेशा जो मेरे दिल में रहती रहते जी, वो ये कि इतना बड़ा यज्ञ जिसे खून पसीने से भगवान ने खुद सींचा अपने महान आत्माओं के द्वारा, इन्हीं छोड़कर कहीं एक छोटे से स्थान पे आना, ये तो अलग से ही बात नहीं उतरती, एक कॉमन सेंस की भी बात।
आपके विचार द्वारा परफेक्ट है, जो उसने यज्ञ स्वयं रचा है वो तो उसी में कार्य करेगा, जो उसने रचा ही नहीं है वो तो क्यों जाएगा।
जी जी, और संदेशियों में के माध्यम से बाबा ने ये स्पष्ट भी किया रहता है जी कि ऊपर से बाबा डायरेक्शन देते रहेंगे, यज्ञ को चलाते रहेंगे, तो फिर प्रश्न पैदा ही नहीं।
क्योंकि मैं इसमें साथ में ये भी जोड़ दूं, एक दो साल में ये हो गया है, दो चार जगह जो बाबा आते थे वो बाबा लोप ही हो गए, उनके फॉलोअर्स भी गए और वो भी गए, सारे लोप हो गए। इसलिए इस संशय में किसी को भटकना नहीं चाहिए।
बहुत सुंदर, शुक्रिया दादा जी, इसकी बहुत जरूरत थी। एक प्रश्न पता जिसी से जुड़ा हुआ आया है कि बाबा का रथ मुकर्रर है ये बाबा कहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा और दादी गुलजार ये बड़े नंदी और छोटे नंदी हो गए, फिर इसके अलावा बाबा संदेशियों में क्यों आते हैं? इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है, क्योंकि फिर इतने सारे स्थानों पर संदेशियां हैं, बाबा यदि अलग अलग जगहों पे आने लगे, संदेश आने लगे, तो क्या इससे डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होगी?
इससे कंफ्यूजन होगा, इसलिए बाबा अलग अलग जगह आते ही नहीं। मैंने कहा जो उसका महान यज्ञ है और निमित्त बनी आत्माओं ने जिसको नियुक्त किया होगा, जो भोग लगाएंगे, उनके तन में आकर भी वो ज्ञान नहीं देंगे, केवल दृष्टि देंगे, केवल उनका आगमन हो सकता है। इसलिए सब जगह उनके आने की बात ही नहीं है, क्योंकि यज्ञ उसने यही रचा है।
जी जी जी, अरे जो बात आपने कही ये मेरे भी ध्यान में नहीं थी कि वो संदेशों में आके केवल दृष्टि देंगे, ज्ञान नहीं देंगे, या बाबा ने इसे भी कहीं कोट किया है?
नहीं किया ही है, क्योंकि ज्ञान उनका संपूर्ण हो गया, और जैसे जैसे बाबा का ये पाठ भी पूरा हुआ, आपने देखा होगा ज्ञान देना कम होता गया, बिल्कुल कम होता गया, और लास्ट में तो दो चार लाइन ही बोलते थे, 10-15 मिनट, और दृष्टि देते थे,
चले जाते थे। हम वेरीफाई कैसे करें? कई बार ये कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है, ये बाबा है नहीं है, सत्य क्या है असत्य क्या है, ये भी इनका अगला प्रश्न है।
देखिए ये तो ऐसी बात होती है, मान लो कोई विश्वास से बैठ जाए कि बाबा आ गया, अब उसके वो तो निराकार है, उसका वैसे तो पता नहीं चल सकता, और दृष्टि देंगे, और जब कोई भी ऐसा दीदी आत्मा कहीं आएगी तो शांति के वाइब्रेशंस भी अवश्य फैल जाएंगे। जैसे मैंने कहा बहुत अच्छी आत्माएं भी है, कोई महात्मा की आत्मा भी हो सकती है, किसी साधक की आत्मा भी हो सकती है, लेकिन जिन्होंने परमात्म सुख का अनुभव किया है और जो श्रेष्ठ योगी होंगे, वही केवल इसको, इस डिफरेंस को समझ सके।
जी जी, मैंने आपने कहा कुछ अच्छी आत्माएं भी आ जाती हैं, चलिए वो अच्छी आत्माएं आए, लेकिन वो भगवान का नकल क्यों करते हैं?
बस ये तो मनुष्य को एक आदत होती है ना, अपने को बड़ा साबित करने की, जैसे यहाँ भी मनुष्य को होती है ना, उनको भी होती है, मेरा मान हो जाए, सब लोग मेरे
किसी में भगवान की नकल करें,
भगवान की मैं अनुभव सुना देता हूँ। पोलैंड में एक परिवार में ऐसे कई आत्माएं आ गई, फिर एक आई, मैं बाबा आ गया हूँ तुम्हारी रक्षा करने इन आत्माओं से, उसको देखते हुए भाग गई सब। इन्होंने परिवार वालों ने समझ लिया सचमुच बाबा आ गया, भोग खिलाओ मेरे लिए 108 तरह का भोग बनाओ, बेचारों ने 108 तरह का भोग बनाया, 2-3 दिन में खाने आई, खा ली और बता दिया मैं बाबा नहीं हूँ, मुझे तो भोग खाने की इच्छा थी। फिर मुझे फोन किया, मैंने कहा तुम वैसे ही नहीं समझ पाए, भगवान भला 108 तरह का भोग मांगेगा क्या? भगवान मांगता है, उसे तो प्यार से फूल ही अर्पित कर दो, उसी में तृप्त हो जाता है। तो ये ऐसे ऐसे केस होते हैं, मेरे पास तो क्योंकि बहुत आते रहते हैं ना घटनाएं, बाबा वाले केस तो बहुत आते हैं।
इसीलिए मुझे लगा कि आज सभी भाई बहनों के हितार्थ इस बात को स्पष्ट कर लेना बहुत आवश्यक है। पिताजी अगला प्रश्न है कि संदेशियों के संदेश में अंतर क्यों होता है? कईयों का संदेश बिल्कुल स्पष्ट होता है और कईयों का हमें समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों है?
देखिए, मान लो आप सवेरे मुरली सुन रहे हैं, 10 लोग मुरली सुन रहे हैं और उनको रिपीट कराया जाए कि तुमने क्या सुना, तो सबकी बातें अलग अलग होंगी। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार, अपने पुरुषार्थ के अनुसार सब बातों को कैच करते हैं। तो संदेशियों में भी ऐसे ही है, जिसकी जैसी स्थिति है, जिसका जैसा ज्ञान है, अच्छी धारणाएं हैं, उस अनुसार उनको संदेश दिया भी जाता है। मैं तीसरा विवरण दूंगा। मान लो आपके पास 4 लोग आए हैं अलग अलग समय पर और प्रश्न एक ही लेकर आए हैं कि हम कैसे माने कि भगवान इस धरा पर आते हैं। आप 4ों को उत्तर अलग अलग देंगे, उनको समझते हुए, परखते हुए, उनकी भावनाओं को, उनके पीछे उनका बैकग्राउंड क्या है ज्ञान का, उसको समझते हुए, तो 12 भी संदेश हर एक को उनकी स्थिति, उनकी भावना उस स्थान के अनुसार ही देते हैं।
जी जी जी। तो ये जो सुनाती हैं संदेशियां, अब जैसे इन्होंने कहा कि हमें कुछ स्पष्ट होता है, कुछ नहीं होता, तो क्या हमारी भी मनोस्थिति पे ये?
बिल्कुल, अगर हमारी बुद्धि की लाइन बहुत अच्छी क्लियर होगी तो हम खुद भी कैच कर सकेंगे। मान लो बाबा ने किसी को बगीचा दिखाया
जी,
उसमें बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग फूल थे, उनमें कुछ भौरे घूम रहे थे। अब इसके अर्थ को समझने के लिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग होगा। कोई तो सिंपल समझेगा, भाई भोरे तो शायद इकट्ठा कर रहे थे, कोई कहेगा ऐसे ही घूम रहे थे, सुगंध बहुत अच्छी थी। तो ये ऐसे ही होता है, हरेक की स्थिति के अनुसार उनको संदेश दिया भी जाता है और जो सीन वो देखते हैं उसको वो एक्सप्लेन भी अपनी बुद्धि अनुसार करते हैं।
जी जी। तो फिर यहाँ मिक्सचर होने की संभावना नहीं रहती कि भगवान कुछ और देना चाहते हो, कहना चाहते हो, और संदेश जो आया उसमें मिलावट होगी?
हो सकता है, लेकिन मिला जुला आता अच्छा रहता है जब आ जाए, इसलिए सबका साथ लेकर ग्रहण कर लेना चाहिए।
मतलब हम अच्छी से अच्छी चीज जो भगवान ने हमारे लिए भेजी है, और होती तो अच्छी ही है, जो भी चीज होती है उसमें कुछ नेगेटिव वाली बात तो होती ही नहीं, बस इन्हें थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहिए था कि हम इसे किस रूप में लें। वैसे जी, अगला एक प्रश्न आया है कि दादी गुलजार जी की अस्थियों को गंगा में क्यों विसर्जित किया गया? अब तक देखा गया कि ब्रह्मा बाबा की भी अस्थियां स्तंभ पे हैं, दादियों की भी हैं, तो क्या दादी की अस्थियां उनके स्तंभ पे नहीं रखी जानी चाहिए?
रखी जाएंगी, थोड़ी रखी जाएंगी, बाकी सबको विसर्जित कर दिया, क्योंकि ये ऐसी चीजें इनको रख के करें क्या ज्यादा। तो हिंदू धर्म में ये प्रथाएं चली आई भी, विसर्जित कर लो फिर समाप्ति होगी।
क्या ये ब्राह्मणों की भी परंपरा है कि हम
ब्राह्मणों में भी सभी लोग अस्थियां विसर्जित कर ही देते हैं? इसका सिंपल रहस्य यही है, उन्हें रख के करेंगे क्या, फिर याद आती रहेगी, और देहधारियों को याद नहीं करना होता, उससे उनके वाइब्रेशन भी फैलते रहेंगे, इसलिए विसर्जित करना माना मुक्त हो गए।
तो क्या बाबा की अस्थियां, दादियों की भी अस्थियां, बड़ी दादी
थोड़ी थोड़ी विसर्जित की जाती है, थोड़ी वहां रखी जाती है, थोड़ी विसर्जित की जाती है?
जी जी जी। कहीं का ये प्रश्न था दादा जी की, क्या ये अलौकिक परंपरा नहीं है? और दूसरा ये भी एक प्रश्न था इससे जुड़ा हुआ कि हम तो कहते हैं कि गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावनी तो पतित पावन बाबा हैं और ये हमारी दादियां हैं, ये ज्ञान गंगाएं हैं, तो क्या अस्थियों को उस गंगा में विसर्जित करना?
नहीं, कहीं भी कर सकते हैं आप, सरयू नदी में भी कर सकते हैं, गोदावरी में, नर्मदा में, कहीं भी विसर्जित कर सकते हैं।
जी जी।
लेकिन भक्ति में तो एक मान्यता चली है, विसर्जन का असली कारण जो मैंने बताया वही है कि समाप्ति, भाई हम भी उनके वाइब्रेशन से मुक्त हुए और उस आत्मा ने भी देखा मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, वो भी पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार हो गई।
जी जी। तो मतलब किसी इस भाव में लेने की जरूरत नहीं, और थोड़ी अस्थियां विसर्जित की होंगी, बाकी दादी की जो अस्थियां हैं वो स्तंभ में रहेंगी ही रहेंगी। और मैं तो बाबा जी जैसे प्रश्न आया तो मेरे मन में भाव आ रहा था कि दादी की अस्थियां यदि गंगा में डाली भी गई तो गंगा अब सचमुच पतित पावनी हो जाएगी, गंगा अब पावन हो जाएगी, क्योंकि इतनी पवित्र अस्थियां थी।
आपका ये सोचना भी ठीक है, लेकिन कई लोग थोड़ा ज्यादा सोचते हैं गंगा में क्यों, यमुना में क्यों नहीं।
और रिचुअल्स की बात खास करके बताते, जिन्होंने जो लिखी है कि ऐसे रिचुअल्स तो हमारे यहाँ है नहीं, बाबा तो इनके लिए मना करते हैं, ऐसा क्यों?
ऐसा है, मैंने इसका उत्तर दे दिया है, रिचुअल तो जो भी चले आ रहे हैं, परंपराएं जो धर्मों में चली आ रही है उसका अनुसरण तो हमें करना ही होगा। अब हम कहें कि हम अग्नि संस्कार क्यों करें, हमारा तो रिचुअल नहीं है, तो हम क्या करें, हमें एक नई परंपरा बनानी पड़ेगी, उस पे भी फिर विवाद होगा, कोई पसंद करेगा कोई नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में जो परंपराएं चलती आ रही है उसको सहज रूप से फॉलो ही है। और जैसे मैंने कहा विसर्जन का अर्थ होता है समाप्ति, कनेक्शन कट ऑफ कर देना। इसमें राज ये भी है ना, जो आत्मा जिस आत्मा की वो है, दादी की बात चलते हैं, कोई आत्मा है जिसकी हड्डियां नीचे रखी हैं, जब तक उसकी हड्डी भी वहां रखी वो आत्मा वहां से जुड़ी रहेगी। इसलिए उसकी मुक्ति के लिए वो पुनर्जन्म ले आवश्यक होता है कि सब कुछ समाप्त कर दिया जाए।
जी जी,
इसलिए राग को भी बहा देते हैं।
जी, तो लता जी इस पे एक रूप में यदि ये भी कहें कि जैसे कई बार जो हम अस्थि विसर्जन करते हैं वो जैसे संपूर्ण रूप से एक मुक्ति का स्वरूप है जो हमारे धर्म में वर्णित किया गया है, तो हम इसे किसी अन्यथा ना लें कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन इसके पॉजिटिव एक स्वरूप को लेकर
हमारे आचार्यों ने ऋषियों ने जो परंपराएं बनाई थी वो बड़ी मतलब बुद्धिमानी पूर्वक बनाई गई है। उसमें बाद में चल के कई रिचुअल्स जुट जाते हैं, वो अलग बात है, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार लोग कई चीजें करते हैं, लेकिन वो सब बिल्कुल सत्य थी।
जी 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 जी, दादी जी एक प्रश्न आया है कि सतयुग में मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो दादी जी का उस समय क्या पद होगा?
दादी जी उनके ही महलों में रॉयल फैमिली में होंगी कहीं भी, क्योंकि इसमें क्या होगा कि एक साथ कई गद्दियां भी चलेंगी, चाहे तो किसी का पार्ट उनके ही साथ है महलों में या किसी का पार्ट दूसरे राज्य को संभालने में है, एक साथ कई गद्दियां चलती रहेंगी। बाबा ने तो कहा 8 गद्दियां चलेंगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये साथ साथ चलने वाली गद्दियों के लिए भी है, क्योंकि सतयुग पूरे में तो केवल 8 गद्दी नहीं चल सकती, ज्यादा चलेंगी। एक राजा 150 साल थोड़ा ही राज करेगा, भाई 75-80 साल ही राज करेगा, तो सतयुग में तो राज करेंगी पूरी 108 आत्माएं, तो गद्दियां भी 16-18 चल जाएंगी। लेकिन जब इस महाराजन गद्दी पर बैठे तो साइड में, जैसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में साइड में सभी स्टेट्स हैं, ऐसे ही वहाँ भी संभव है कि 8 गद्दियाँ चलती हों, तो ये महान आत्माएं अलग अलग राज्य को संभालने वाली।
जी जी, आप दादी से मिले भी थे बेटा जी, वो आप व्यक्त होने से कुछ समय पहले जब दादी बॉम्बे में थी, तो एक प्रश्न है कि कर्मातीत स्थिति की को प्राप्त करने के लिए दादी का क्या उस समय आपको पुरुषार्थ लगा या आपने क्या उनसे?
देखिए दादी जी जो थी पहले से जो उनकी नेचर थी है बहुत ज्यादा डिटैच रहने की, उसका उनको और ज्यादा अभ्यास हो गया था उपराम स्थिति, और कर्मातीत होने के लिए अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना इसमें तो वो थी ही। अभी क्या है सारी चीज तो कोई भी श्रेष्ठ साधक बताता नहीं है ना, लेकिन बहुत अच्छा योग युक्त रहना, बाबा से बातें करते रहना, सोल कॉन्शियस रहना, और उपरांता तो उनकी बिल्कुल ज्यादा थी, उनके चारों ओर भी क्या हो रहा है उससे वो डिटेच थी, और कर्म भोग भी थोड़े बहुत तकलीफ तो होती है, लेकिन कोई बहुत पीड़ित को हो रही हो ऐसा भी कुछ नहीं था, तो सहज भाव से कर्मों का हिसाब भी चुप्त किया और उपराम और डिटैच रह के आत्मिक स्वरूप का ज्यादा अभ्यास करते हुए वो अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुई।
जी जी जी, दादा जी एक चीज जैसे अब क्या होगा वाला जो प्रश्न था उसमें से एक मूल रूप से जो बात कईयों ने पूछी थी, यज्ञ बाबा के संदेश में भी एक बात आई थी कि आपसी कई बार मतभेद हो जाता है बच्चों में, तुम आम रस की तरह मीठे होकर के सबके साथ चलो, मिल करके चलो, एक होकर के चलो, तो वो स्वरूप कई बार ये दिखाई नहीं देता, ये लाने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें और क्या यज्ञ में ऐसी फिर संभावना है, क्योंकि कई बार पोजीशन वाली बात ज्यादा देखने में आती है।
देखिए यज्ञ का स्वरूप कुछ और अच्छा होने वाला, हालांकि मैं उसे जानता हूँ लेकिन वो अभी बताने का समय नहीं है, आप सब देखेंगे। अब यज्ञ में एक स्पिरिचुअल लहर भी चलेगी, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं पोजीशन चाहिए पद चाहिए उनको जल्दी ही आभास हो जाएगा कि इसमें कुछ नहीं रखा है, दुनिया में कितने पद हैं आजकल, कलयुग में भी सरकारों के पास क्या लाखों पद नहीं है, मैं हजारों नहीं कह रहा, हजारों पद तो बड़े हैं, लाखों पद हैं, लोग कितने अशांत हैं, कितने दुखी हैं, असंतुष्ट हैं, टेंस रहते हैं, तो स्पिरिचुअल मार्ग पर भी लोगों को यह एहसास होता जाता है कि ये पद पोजीशन रियल अचीवमेंट नहीं है, रियल अचीवमेंट तो अपनी योग युक्त स्थिति, अपने को बहुत पावरफुल बनाना, अपने को एब्सोल्युटली निर्विकारी बनाना, ये है श्रेष्ठ स्थिति। तो बहुत जल्दी ये जो पद पोजीशन की भाग दौड़ है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मैं सार रूप में दो बातें कह दूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा, लेकिन मान लो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, अगर धन और पद पोजीशन की भाग दौड़ ज्यादा बढ़ गई तो उनका पतन होता ही है। और अगर योग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ा दिया गया जैसे बीजेपी ने किया तो उत्थान निश्चित है। तो हर धार्मिक और आध्यात्मिक संस्था को सोच लेना चाहिए, पद पोजीशन के पीछे भागदौड़ करना पतन का मार्ग अपनाना है। इस महान यज्ञ का पतन नहीं होगा, उनका पतन होगा। इसलिए इनको छोड़कर अपने को वो बनाना जो भगवान की हमें आज्ञा है वही श्रेष्ठ मार्ग है। अब उसी की ओर सबको चलना है। और ये महान यज्ञ अब लाइट हाउस बनेगा जल्दी, ऐसे वैसे लोग सब डाउन हो जाएंगे और जो रियल योग है जिन्होंने अपने को महान बनाया है वो इस यज्ञ को संभालेंगे। और ये यज्ञ संसार में महान तीर्थ लाइट हाउस माइट हाउस बनकर विश्व का कल्याण करेगा।
जी जी जी, ये हम लगातार अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में सुनते रहे हैं जो आपने अभी कहा कि सारे संसार में केवल ब्राह्मण ही छा जाएंगे और प्रत्यक्षता का सुंदर नगाड़ा बजेगा। एक अंतिम प्रश्न बैठा जी जो एसेंस रूप में आया था, बहुत सारे थे उसमें से ये कि ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त रूप में ऊपर रहते हुए इतने लंबे समय तक पार्ट प्ले किया। कई लोग तो बीच में कहने लगे थे कि कृष्ण का जन्म हो गया है क्योंकि उनकी काउंटिंग अपनी रही होगी। अब दादी ऊपर है तो तुरंत जन्म लेना बाबा का संभव नहीं है, तो ये जो अव्यक्त पार्ट है बाबा का वो कब तक और चलेगा ऊपर से? और ये जो 111 की बात हम प्रारंभ से सुनते आ रहे हैं, कृष्ण के जन्म की बात, थोड़ा सा प्रकाश अंत में।
देखिए, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है जो 2036 में पूर्ण होगी। 100 वर्ष तक ब्रह्मा का पाठ चलेगा। 33 वर्ष साकार में चला था, अव्यक्त में चला, वो ऊपर से चलेगा। उसके बाद वो आत्मा जाएगी परमधाम में। जो लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया, उन्हें भूल गया कि बिना परमधाम में गए ब्रह्मा की आत्मा श्री कृष्ण के रूप में जन्म नहीं ले सकती। और परमधाम का द्वार अभी खुला नहीं, अभी तो आ रही है वहां से आत्माएं, अब तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अभी तो इस संसार की समाप्ति का खेल ही प्रारंभ नहीं हुआ है। तो 2036 तक ये ब्रह्मा का पाठ पूरा होगा, वो आत्मा वतन में जाएगी, श्री कृष्ण मन के नीचे आएगी। तो 2036 ही श्री कृष्ण के 36-37 ही उसके जन्म का स्थान है, जन्म की तिथि है। और उसके बाद वो बड़े होकर गद्दी पर बैठेंगे, जो वो लक्ष्मी नारायण बनकर गद्दी पर बैठेंगे दोनों राधे कृष्ण, तब से 111 शुरू होगा। इले संगम युग के 100 वर्ष ब्रह्मा के हैं, वो बीच का ये पीरियड और है जिसमें ये देवता बड़े होकर गद्दी पर बैठेंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, बिल्कुल अब क्या होगा वो पूरा स्पष्ट हो गया। अभी क्या होना है और आगे क्या होना है सभी बातों का आपने बहुत ही सुंदर सहज सरल हम सबको उत्तर दिया है। और मुझे लगता है कि सबके जो अंतर मन में प्रश्न थे औरों के द्वारा पूछे हुए भी वो सारे ही निर्मूल हुए और एक सुंदर प्रकाश मिला। दिल से प्रभा जी आपका बहुत बहुत सबकी ओर से शुक्रिया। सचमुच एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम सबके ऊपर आ गई है। जैसे प्रश्न में भी एक था कि बाबा ने कहा जिम्मेवारी अब तुम्हारी है, लौकिक में भी हम देखते हैं कि घर का जब बड़ा चला जाता है, हमारे बड़े तो गए नहीं है, हमारे साथ हैं, अंत तक रहेंगे, हम तो साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ आएंगे के वायदे के साथ जी रहे हैं। और ये किसी और का नहीं, भगवान का, ब्रह्मा बाबा का, दादियों का वायदा है। लौकिक के हिसाब से मैं कह रहा था कि घर का बड़ा कोई चला जाता है तो बच्चे जिम्मेवारी संभाल लेते हैं। अब तक जो उनका खेलना कूदना इधर उधर भागना दौड़ना होता था, घूमना फिरना, वो नहीं, अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब जो कार्य पिताजी किया करते थे वो कार्य अब मुझे करना है, मुझे घर को संभालना है, मुझे सबका ध्यान रखना है, सबकी पालना करनी है, सबको विकास की ओर लेके चलना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लौकिक में भी आ जाती है। अब हम में से हर एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि बाबा ऊपर गए हैं तो हमें जिम्मेवारी सौंप के गए हैं इस पूरे ही बेहद परिवार की, यज्ञ की, समूचे विश्व की हमें उनके समान पालना करनी है। तो हम सब अपने बाबा की इस आशा को जरूर पूर्ण करेंगे और साथ ही अपनी जिम्मेवारी के भाव को अब अपने अंदर जरूर ले आए। दादी गई तो हम भी तो अपने आप को ऑफर करें ना बाबा को कि बाबा मैं हूँ, आप मुझे जहां भी सेवा में यूज करना चाहें आप मुझे यूज करें। ये सचमुच हमारी अवस्था को ऊंच ले जाने वाली होगी और बाबा हम सबसे यही चाहते हैं। निश्चित रूप से हम सब मिल करके एक होकर के आमरस की तरह मीठे होकर के बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे और सारे संसार में एक साक्षात्कार की जो धूम होनी चाहिए उस धूम को मचाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। यही शुभ संकल्प हमारे सभी बड़ों का भी है, दादियों का भी है, आदरणीय भ्राता जी भी हम सबको लगातार इसी अर्थ प्रेरित करते रहते हैं। भाई हम सब मिलके उस ओर बढ़ें और बाबा के स्वप्न को सुंदर साकार रूप प्रदान करें। चलिए बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे हम बैठ करके और साथ ही दृढ़ संकल्प करेंगे कि बाबा आपके यज्ञ को हम मिल करके जिम्मेवारी पूर्वक आगे ले चलेंगे।
Thank you.